क्या हमें तारीखी रिकॉर्ड से जो हिस्ट्री हमें मिलती है उसमें कुछ जिक्र मिलता है कि मसलन सईदना अबू हुरैरा का कोई अपना नुस्खा है, या सईदना माज बिन जबल का अपना कोई नुस्खा है, सईदना अबूबकर का भी अपना कोई नुस्खा है? ये हिस्ट्री इस बात को क्या वेरीफाई करती है?
देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, इसके अंदर भी, इस सवाल के अंदर भी वही चीज़ या वही तसव्वुर कार फरमा है। वो एक नुस्खा रसूलुल्लाह ने मरतब कराया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, क्या कोई चार नुस्खे थे कि ये कहा जाए कि माज़ बिन जबल के पास भी नुस्खा था और सैयदना उमर के पास भी नुस्खा था और सैयदना उस्मान के पास भी नुस्खा था? भाई, हर एक के पास था। हर आदमी किसी ना किसी दर्जे में कुरान मजीद को महफूज कर रहा था। यानी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हर लिखने वाले की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मुझे ये बताएं कि आप अगर लिखना जानते होते और उस वक्त रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते और कुरान मजीद आपको पढ़ के सुनाया जाता, तो आप अपने कलम को किस लिए इस्तेमाल करते?
कुरान लिखने के लिए।
ये बिल्कुल खिलाफ फितरत बातें हैं जितनी भी की जा रही हैं। कुरान मजीद बड़े गैर मामूली तरीके से शायो ज़ाय हुआ है। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ के सुनाते हैं तो आप यूं समझिए कि इस तरह बारिश हुई और हर एक ने, हर सीपी ने मुंह खोला हुआ है, हर सदफ इसके लिए मुंतजर है कि ये कतरा ऐसा मेरे अंदर आए। तो अल्लाह ताला की ये बरकत, रहमत, ये उसकी रहमत की बारिश जब होती थी तो हर आदमी अपनी झोली लेके बैठा हुआ होता था कि ये मेरे यहां आए, मैं इसको अपने दामन में समेट लूं। तो इसलिए सहाबाए किराम का कुरान मजीद से गैर मामूली ताल्लुक था, उसका मुजाकरा करते थे, पढ़ के सुनाते थे, वही उनकी जिंदगी थी, वही उनकी दावत थी। इसलिए ये तो सवाल ही बिल्कुल बेमानी है। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ नुस्खा मौजूद था, कुछ लिखा हुआ मौजूद था, और जो लिख नहीं सकता था उसने याद किया हुआ था कुरान मजीद जितना याद कर सकता था। किसी ने 10 सूरतें, किसी ने 20 सूरतें, किसी ने पूरी पूरे की पूरी किताब, सब लोग इसी तरीके से उसको शायो ज़ाया कर रहे थे। और इसी तरह से मुसलमानों के अंदर वो एक रिवायत के तौर पर पढ़ा भी जा रहा था, बच्चों की तालीम का अहतमाम भी हो रहा था। ये सारी चीज़ें तारीख के औराक में सब्त हैं और बिल्कुल फितरी तरीके से ऐसे ही अब भी होता है। इस वक्त भी अगर आप गौर करके देखें तो हमारे यहाँ वो लोग जो दीन से दिलचस्पी नहीं रखते होते, कोई दीनी काम करने के लिए तैयार नहीं होते, कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा होता, वो भी ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को एक कारी साहब के जरिए से कुरान जरूर पढ़वा दिया जाए। ये इस दौर का मामला है। तो आप ये कैसे तसव्वुर करते हैं कि वहां कोई चार पांच नुस्खे होंगे? इस सवाल के पीछे वही बात है कि वो एक नुस्खा या दो नुस्खे या तीन नुस्खे, यूं है ही नहीं। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नेमत उनको दे रहे हैं, अल्लाह ताला की किताब, इसको वो लपक कर ले रहे हैं और अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, सलाहियत के मुताबिक हर आदमी उसको अक्स कर रहा है और हर आदमी महफूज कर रहा है। यानी कोई चंद सूरतें कर रहा है, कोई पूरी किताब कर रहा है, कोई इसको हिफ्ज करके कर रहा है, कोई लिख के कर रहा है। और इस तरह ये बेशुमार मसाहिफ थे जो सहाबाए किराम में शायो ज़ाय हो चुके हुए थे। यानी कुरान मजीद मुसहफ की हैसियत से लोगों के दरमियान जेर बहस आता है, वो उसका हवाला देते हैं। ये सारी तारीख जितनी भी है वो हमारी मुसलमा तारीख है। तो कुरान को कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उसका एक नुस्खा तरतीब करके रखा जाए। ये तो मेरी आपकी ज़रूरतें रही हैं कि कोई एक किताब है, लिखी है, किसी कातिब से लिखवाएं, उसको कहीं रखें, कहीं महफूज करें, उसका कोई मखतूता हो, कल को किसी को मैसर आ जाए। ये अल्लाह की किताब थी, उन लोगों को दी गई जो इस किताब को सबसे बढ़कर आगे बढ़कर लेने वाले थे, उस पर ईमान लाए थे, उसके लिए तकलीफें सह रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ी दौलत यही थी। तो वो इसको क्या फेंक देते? नहीं, उन्होंने इसको समेटा और कभी अपने दामन में लिया तो अपने सीने में छुपाया और कभी सफीनों में उसको महफूज कर लिया।
ठीक।